हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय नौ श्लोक संख्या 30 से प्रारंभ करेंगे। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। न कामयेना तदप्यहं क्वचिन् न यत्र युष्मत् शरणाम्भुजासव महत्तमन्तर्हृदयान्मुखच्युतो वीदस्वकरणयुतमेष मे वर। जिह्वानवकति भगवत गुणनामधेयम् चेतश्च न स्मर्ति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्चिरैकदापि तानानयत्वमसतो अकृतकृत्येषु तस्मात् सङ्कीर्तनं विष्णु जगन्मङ्गलमोहसा महत्तामपि कौरव्य विद्यैकान्तिकनिष्कृता। जय जय श्री राधारमण जय जय नवलकिशो जय गोपी चित्तचोर प्रभु जय जय माखनचोर। श्री कृष्ण भगवान की जय। ग्रंथ रहा श्रीमद्भागवत महापुराण की। श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय नौ जिसका शीर्षक है सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति। जब ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करने के उपरांत मौन धारण कर लिया तो फिर भगवान ब्रह्मा जी से बहुत प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी को के सामने प्रकट होकर उनको आशीर्वचन कहने लगे। सबसे पहले तो भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, तुमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हें कार्य सौंपा गया उसके लिए आशीर्वाद तो बहुत पहले ही दे दिया मैंने। मानो वो कार्य तो समझो हो गया, बस तुम्हें हाथ लगाना है और बहुत ही सुचारू ढंग से वो सारा कार्य हो जाएगा। और उसके उपरांत तो भगवान बहुत बहुत सुंदर ब्रह्मा जी को आशीर्वाद देते हैं। तो वास्तव में जो भगवान ब्रह्मा जी को ये ज्ञान दे रहे हैं वो हमारे सबके लिए है, क्योंकि भगवान ने हम सबके लिए कुछ न कुछ तो कार्यभार सौंपा है। हम संसार में आए हैं तो कुछ हमारे कर्तव्य हैं और भगवान ने उन सब कर्तव्यों को करने की शक्ति और क्षमता हमको प्रदान कर दी है। वास्तव में सब कुछ करने वाले भगवान ही हैं। हमको सिर्फ सिंसियरिटी के साथ आगे बढ़ना है। और भगवान कहते मैया वेते निहत्ता पूर्वमेव निमित्त मात्र भव सव्य साचिन। आपको केवल निमित्त मात्र बनना है और भगवान सब कुछ वास्तविक जो कार्य भार है वो भगवान के ऊपर है, वो भगवान स्वयं ही करेंगे। हमको खाली भगवान के आदेश को समझना है कि मुझे भगवान ने क्या कार्य करने की
के लिए नियुक्त किया है, सारी साधना उसी के लिए है। और जैसे जैसे हम अपनी साधना को बहुत दृढ़ करते जाएंगे तो भगवान हमको हृदय में ज्ञान प्रदान करेंगे कि आपको अब कैसे करना है। ब्रह्मा जी को भगवान श्लोक नंबर 30 में कहते हैं, ये भगवान के मुख से निकले हुए शब्द हैं, इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रया ताभ्यामान्तरिति ब्राह्मन् लोकान् द्रक्ष्यस्य तावृता भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रया ताभ्यामन्तरिति ब्राह्मन् लोकान् द्रक्ष्यस्य तपाव्रता। भूय अर्थात पुनः वापिस से दोबारा, त्वम तप आतिष्ठ वापिस से तुम तपस्या में स्थित हो जाओ। आतिष्ठ मतलब अब तक तुमने इतनी तपस्या की, उसके बाद तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को भगवान का आदेश हुआ कि अब तुम वापिस से तपस्या करो, क्योंकि मनुष्य का जीवन बना ही तपस्या करने के लिए। ये तपो दिव्यम पुत्र काये न तत्वम। अभी ब्रह्मा जी को भगवान कहते बस वापिस से तपस्या करो, और विद्याम चैव मदाश्रया, विद्या मतलब ज्ञान में, ज्ञान में च एव निश्चय ही मद आश्रय अर्थात मेरे संरक्षण में, अब तुम मेरे संरक्षण में रहकर दोबारा से तपस्या करो। और ताभ्यामंतर रिधि ब्राह्मण, ताभ्याम मतलब उन योग्यताओं द्वारा, अंत भीतर रिधि रिधि में ब्राह्मण, हे ब्राह्मण लोकान यानी सारे लोग, द्रक्ष्यसी देखोगे अपावृतान प्रकट हो। बहुत ही सुंदर भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं कि देखो तुमको कुछ ज्यादा अपनी बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं है, जैसे ही तुम मेरा ध्यान करोगे और मेरे आदेशों अनुसार जब आप, और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए जब हम कोई कार्य करते हैं तो भगवान तो हृदय में रहते ही हैं, तो अवश्य हमारी उस प्रॉब्लम को भगवान सॉल्व कर देते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी को भगवान कहते हैं, हे ब्रह्मा तुम अपने को तपस्या तथा ध्यान में स्थित करो। हम जो महामंत्र जप करते हैं ना, जितना जितना ध्यान के साथ, हमारी सबसे बड़ी तपस्या यही है, हमारा सबसे बड़ा ध्यान यही है, और जब हम इसमें बहुत ही तीव्रता के साथ स्थित हो जाते हैं, और मेरी कृपा पाने के लिए ज्ञान के सिद्धांतों का पालन करो। ज्ञान के सिद्धांत क्या हैं? जो गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार हमको आज्ञा दी जाती है, वो अगर हम उसको श्रद्धा के साथ पालन करते हैं तो इन कार्यों से तुम अपने हृदय के भीतर से हर बात को समझ सकोगे। दो कार्य भगवान ने बोले, एक तो अपनी साधना अच्छे से करनी है, और दूसरा गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार जो हमारे लिए आज्ञा है उसको बहुत अच्छे से, ज्ञान के सिद्धांतों को पालन करना है। फिर इन कार्य करने से हृदय के भीतर स्वतः हमको जो वास्तविकता है वो प्रकट हो जाएगी, हर बात समझ जाएंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत ही सुंदर श्रील प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि किसी सौंपे गए उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य को संपन्न करने में लगे हुए विशिष्ट व्यक्ति के प्रति भगवान द्वारा प्रदर्शित किया प्रदर्शित दया अकल्पनीय है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आपको भगवान की ओर से कोई विशेष कार्य सौंपा जाएगा ना, तो उसके करने के लिए भगवान जो आपको दया कृपा और सहयोग देंगे ना, वो अकल्पनीय, आप सोच भी नहीं सकते हो। भगवान जब किसी को चुनते हैं ना कोई कार्य करने के लिए, तो भगवान उसको पूर्ण कृपा प्रदान करते हैं, फिर अकल्पनीय। हम कोई देखने वाले बोलेंगे अरे ये कैसे कर लिया इसने, लेकिन ये भगवान की कृपा से कितना, जितना जितना हम सिंसियर है ना, तो उतना उतना भगवान हम पर विश्वास करते हैं, है ना, कि ये विश्वास पात्र है, इसके द्वारा मुझे कार्य करवाना है। और जब भगवान विश्वास करते हैं तो हम जब वो कार्य करने लगते हैं तो भगवान अकल्पनीय दया प्रदान करते हैं, और उसके द्वारा वो चमत्कार हो जाता है जो कि कोई समझ ही नहीं पाता। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, किसी सौंपे गए उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य को संपन्न करने में लगे हुए विशिष्ट व्यक्ति के प्रति भगवान की दया प्रदर्शित अकल्पनीय है, किंतु उनकी यह दया भक्ति के प्रति हमारी तपस्या तथा अध्यवसाय के कारण प्राप्त होती है। जितनी हमारी साधना अच्छी होगी, जितना हम सीरियस होंगे, उस पर ही डिपेंड करती है भगवान की दया। क्योंकि भगवान की दया कैसे होगी, पहला कदम तो हमको उठाना है, प्रयास का कदम हमको उठाना है, तब भगवान की कृपा होती है। तो ब्रह्मा को लोगों का सृजन करने के कार्य सौंपा गया था। भगवान ने उन्हें आदेश दिया था कि ध्यान करने पर वे आसानी से जान सकेंगे कि लोगों को कहां पर और किस तरह से व्यवस्थित किया जाए। ये आदेश अंतःकरण से आने थे और इस कार्य में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। अब ब्रह्मा जी को सारे लोगों को प्रकट करना था, कितना बड़ा कार्य। तो भगवान ने कहा तुमको कोई ज्यादा कार्य करने की आवश्यकता नहीं, तुम क्या करो, तुम दोबारा से तपस्या और ध्यान में स्थित हो, और जैसे जैसे तुम तपस्या और ध्यान को करोगे और मेरी कृपा पाने के लिए ज्ञान के सिद्धांतों का पालन करोगे, तो क्या होगा, तो इन कार्यों से तुम अपने हृदय के भीतर हर बात जान सकोगे, खुद ब खुद आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है। तो ब्रह्मा जी ये जो सृजन कार्य करेंगे, ये आदेश उनको कि किस तरह से करना, अंतःकरण से आने थे, और अंतःकरण से जब आदेश आने हैं तो उनके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि तपस्या और ध्यान करने की आवश्यकता है। क्योंकि जितना जितना भगवान ने कहा, जितना जितना आप भजन करोगे ना, उतना उतना मैं आपको अंदर से सशक्त करूंगा। भगवान कहते हैं, यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, बुद्धि योग के ऐसे आदेश स्वयं भगवान द्वारा अंतःकरण से सीधे प्रदान किए जाते हैं, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 10.10 में हुई है। भगवान कहते हैं, तेषां सतत योक्तानां भजता प्रीति पूर्वकम, करने के लिए बस यही है, प्रेम के साथ यदि हम भगवान के पवित्र नाम का भजन करेंगे तो ददामि बुद्धि योगम तम ये नमा उपयन्ति ते, फिर भगवान हमें ऐसी बुद्धि प्रदान करेंगे जिससे हम ये जान सकेंगे कि भगवान की क्या इच्छा है, भगवान को कैसे प्रसन्न करना है, भगवान को कैसे प्राप्त करना है। हमारी सिंसियरिटी हमारा भजन है, और यदि हम प्रेम के साथ भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं तो भगवान सारे कार्यों को बहुत सरलता से करा देते हैं। आगे भगवान कहते हैं, तत आत्मनि लोके च भक्ति युक्त समाहित द्रष्टासि मम ततं ब्रह्मन् मयि लोकांस्त्वामता मयि लोकांस्त्वमात्मना तत आत्मनि लोके च भक्तियुक्त समाहित द्रष्टासि मम ततं ब्रह्मन् मयि लोकांस्त्वमात्मना तत आत्मनि लोके च तथा मन उसके पश्चात जब आप ध्यान करोगे और हृदय से आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, सब समझ जाओगे, उसके उपरांत आत्मनि लोके च, आत्मनि यानी तुम अपने अंदर, लोके मना सारे ब्रह्मांड में भी, भक्ति युक्त समाहिता, भक्ति युक्त यानी भक्ति में स्थित हो जाओगे, समाहिता मन पूर्णतया निमग्न, जब आप भक्ति में पूरी तरह निमग्न होकर मेरा ध्यान करोगे, मेरे आदेश का पालन करोगे, तो तुम अपने अंदर और सारे ब्रह्मांड में दृष्टासी तुम देखोगे माँ यानी मुझे। जितना जितना जीव भगवान के निकट जाता है उतना उतना जीव भगवान जीव के निकट प्रकट होता है। भगवान तो प्रत्येक कण में है, इसे भगवान कहते हैं। जो बुद्धिमान भगवान के शुद्ध भक्त होते ना, उनको हर एक कण में भगवान दिखता है। जैसे प्रहलाद महाराज से पूछा था ना कि भगवान किधर है, तो भगवान तो हर कण में है, लेकिन वो हमें क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि वो प्रेम, वो आस्था, वो श्रद्धा और वो जो पवित्र भजन है ना, वो नहीं है हमारा। तो यहाँ भगवान कहते हैं जैसे जैसे तुम भक्ति में स्थित हो जाओगे, पूरी तरह निमग्न हो जाओगे, तो तुम मुझको अपने अंदर भी देखोगे, सारे लोकों के अंदर भी देखोगे। दृष्टा से माम ततम ब्रह्मन मई लोकांश, मई मना मुझ में, लोकांश यानी सारे लोकों को, त्वम आत्मनि, त्वम यानी तुम, आत्मनि यानी जीव, ब्रह्मांड, फिर तुम सारे ब्रह्मांड में अपने में मुझको भी देखोगे, और जब मैं तुम्हारे समक्ष होऊंगा तो सारे ब्रह्मांडों को और सारे जीवों को तुम मुझ मेरे अंदर देखोगे, यानी कि फिर तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं रह जाएगा। जब जीव भगवान की भक्ति करता है प्रेम के साथ, भक्ति युक्त समाहिता, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति का मतलब है प्रेम के साथ जब हम भगवान का भजन करते हैं, भगवान को स्मरण करते हैं, भगवान के प्रति श्रवण करते हैं, तो धीरे 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 हमको ये पता चलता है कि कृष्ण के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। फिर तो जीव गलत कभी कर ही नहीं सकता, ना तो किसी के साथ गलत कर सकता है और ना ही संसार में कोई गलत कार्य, क्योंकि हर एक क्षण उसको भगवान का सानिध्य प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं जो भक्त होता है ना, उसके अंदर सारे गुण आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? फिर वो कभी काम, क्रोध, लोभ, मद, अमात्सर्य के चक्कर में नहीं पड़ता और ना ही कोई अपराध करता है ना किसी, क्योंकि उसको हर जगह पे कृष्ण दिखता है, हर किसी में कृष्ण दिखता है और कृष्ण के अंदर सारे जीव दिखते हैं। अनुवाद, हे ब्रह्मा, जब तुम अपने सृजनात्मक कार्यकलाप के दौरान भक्ति में निमग्न रहोगे तो तुम मुझको अपने में तथा ब्रह्मांड पर में देखोगे और तुम देखोगे कि मुझ में स्वयं तुम ब्रह्मांड तथा सारे जीव हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं यहाँ भगवान द्वारा यह उद्धरण दिया गया है कि ब्रह्मा दिन के समय उन्हें भगवान श्री कृष्ण के रूप में देखेंगे, वे प्रशंसा करेंगे कि इस तरह वृंदावन में अपने बालपन के समय भगवान ने अपना विस्तार बछड़ों के रूप में कर लिया था और वे जान सकेंगे कि किस तरह यशोदा माता ने कृष्ण की बाल लीलाओं के समय उनके मुख के भीतर सारे ब्रह्मांडों और लोकों को देखा था, तथा वे यह भी देख सकेंगे कि ब्रह्मा के दिन में भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य के दौरान कई लाख ब्रह्मा होते हैं, किंतु भगवान के इतने सारे शाश्वत दिव्य रूप जो सर्वत्र प्रकट होते रहते हैं किसी की समझ में नहीं आ सकते। वे केवल उन शुद्ध भक्तों द्वारा ही समझे जा सकते हैं जो सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं और भगवान में पूरी तरह से लीन रहते हैं। यहाँ पर ब्रह्मा की उच्च योग्यताओं की भी को भी संकेत हुआ है।
श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ब्रह्मा का दिन यानी कि ब्रह्मा के एक दिन में 1000 चतुर्युगी होती है, तो और फिर ब्रह्मा का एक दिन 4,32,00,000,000 वर्षों के होता है। तो जब ब्रह्मा का दिन आएगा तब ब्रह्मा जी भगवान के सारे जितने कार्यकलाप हैं वृंदावन में, भगवान किस तरह से संसार में आते हैं और किस तरह से कार्य करते, क्योंकि 1000 चतुर्युग में एक बार साक्षात भगवान आते हैं। जब सातवें मनवंतर का 28वां चतुर्युग आता है उसमें द्वापर युग में भगवान की लीलाएं होती हैं, किस तरह से भगवान अपने बाल सखाओं के साथ क्रीड़ा करते हैं, कैसे भगवान यशोदा मैया को अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं, कैसे भगवान ही वो सारे बछड़े और बालक बन जाते हैं। ये सारी लीलाएं ब्रह्मा भगवान के समक्ष वो सारी लीलाओं को दर्शन करेंगे। और श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सब लीलाओं को देखने के बाद भी भगवान की लीलाओं को कोई समझ नहीं सकता जब तक कि कोई शुद्ध भगवान की भक्ति नहीं करता है। और जो सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं और भगवान की पूरी तरह भगवान के अंदर लीन होते हैं तो वही भगवान की लीलाओं को समझ सकते हैं। आगे भगवान कहते हैं, यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितम् प्रतिचक्षीत माम लोको जहियातर येव कश्मलम्। यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्नि मिव स्थितम् प्रतिचक्षीत मालोको जह्यात्तर्येव कश्मरम्। यदा तु, तू का मतलब होता है लेकिन, ब्रह्मा जी को भगवान कहते हैं यदा मना जब, तू मना लेकिन, सर्वभूतेषु, सर्व मना सारे, भूतेषु मने जीवों में, दारुषु यानी लकड़ी, अग्निम यानी अग्नि, जिस तरह से लकड़ी के अंदर अग्नि होती है, इव इव मन सदृश मन उसी तरह, स्थित यानी स्थित, प्रतिचक्षित यानी तुम देखोगे, माम यानी मुझको, जिस तरह से लकड़ी के अंदर अग्नि होती है लेकिन हर कोई उसको नहीं देख सकता, उसको देखने के लिए भी बहुत बुद्धि की आवश्यकता होती है। तो भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं कि जब तुम साधना करोगे तब तुम पूरे संसार में उसी तरह से मुझको देखोगे जिस प्रकार से यथा अग्नि दारुष्वग्नि मिव स्थितम, जिस तरह से दारु यानी काष्ठ के अंदर अग्नि स्थित होती है उसी तरह से एव स्थितम प्रतिचक्षति माम, उसी तरह से तुम मुझे देखोगे। लोक जहियात, लोक यानी तथा ब्रह्मांड, जहियात अर्थात त्याग सकता है, तर ही तब यानी तुरंत उसी समय, एव कश्मलम, एव मना निश्चय ही, कश्मला अर्थात मोह। तो जब हर एक वस्तु में भगवत की दृष्टि हो जाएगी फिर संसार का मोह समाप्त हो जाएगा। इसीलिए भगवान ब्रह्मा जी को बहुत सुंदर बात बता रहे हैं, यदा तो सर्वभूतेषु दारुष्वग्नि में व्यवस्थित, जिस तरह हर एक वस्तु के अंदर अग्नि जिस तरह लकड़ी के अंदर होती है और आप मुझे देखोगे, और प्रतीक्षीति माम लोको जहिया तरह्येव कश्मलम, जब तुम मेरा दर्शन कर लोगे फिर तुम्हारा सारा मोह समाप्त हो जाएगा। अनुवाद, तुम मुझको सारे जीवों में तथा ब्रह्मांड में सर्वत्र उसी प्रकार देखोगे जिस तरह काठ में अग्नि स्थित रहती है,
केवल उस दिव्य दृष्टि की अवस्था में तुम सभी प्रकार के मोह से अपने को मुक्त कर सकोगे। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, ब्रह्मा ने प्रार्थना की कि अपने भौतिक कार्यों के दौरान कहीं वे भगवान से अपने नित्य संबंध को भूल न जाए। ब्रह्मा जी ने बोला था ना भगवान को, आप मुझे आशीर्वाद कि मैं जब भौतिक कार्य करूं कि कहीं मुझे अहंकार ना हो जाए, मैं आपको ना याद कर सकूं और अपने आप को सब कुछ समझ जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी ने ये जो प्रार्थना की थी, उस प्रार्थना के उत्तर में भगवान ने कहा कि उन्हें यह विचार तक मन में नहीं लाना चाहिए कि वे भगवान की शक्तिमत्ता से संबंधित रखे बिना रह भी सकते हैं। आप कभी भी ऐसा नहीं सोच सकते कि भगवान की कृपा, भगवान की अनुकंपा, भगवान की शक्ति से संबंध रखे बिना हम एक क्षण जी भी नहीं सकते हैं। यहाँ पर काठ के भीतर अग्नि का उदाहरण दिया गया है। काठ से उत्पन्न होने वाली अग्नि वहीं रहती है, भले ही काठ भिन्न भिन्न प्रकारों का हो। इसी तरह भौतिक सृष्टि के भीतर के जीव के शरीर रूप के तथा गुण के अनुसार भले ही भिन्न हो, किंतु उनके भीतर का आत्मा एक दूसरे से भिन्न नहीं है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बता रहे हैं कि जीव चाहे कोई भी आकार, कोई भी योनि प्राप्त कर ले, लेकिन उनके अंदर आत्मा और परमात्मा कभी चेंज नहीं होते, वो तो वही होते हैं। तो अग्नि की उष्मा का गुण सर्वत्र वही रहता है और आध्यात्मिक सफुलिंग अथवा परमात्मा का भिन्नांश हर जीव में एक सा रहता है। जिस तरह से अग्नि की उष्मा यानी अग्नि के अंदर जो ताप होता है, जो प्रकाश होता है, वो तो वही होता है, चाहे लकड़ी किसी भी प्रकार की हो, उसी तरह से जीव के अंदर जो आत्मा और परमात्मा होते हैं वो एक से रहते हैं। इस तरह भगवान की शक्ति उनकी सारी सृष्टि में वितरित है। एकमात्र यह दिव्य ज्ञान ही मनुष्य को भौतिक मोह के कलमश से बचा सकता है। क्या दिव्य ज्ञान? कि प्रत्येक वस्तु के अंदर जो सत्ता है, जो शक्ति है, जो आकर्षण है, वो इसीलिए है क्योंकि वो भगवान से जुड़ी हुई है, क्योंकि वो भगवान का जो शक्ति है वो उसके अंदर है, तभी उसी के अंदर कोई गुण हो सकता है। वरना तो जब हम हर एक के अंदर जो गुण है वो भगवान का गुण यदि हम समझेंगे तो फिर संसार से मोह नहीं होगा, आकर्षण और आसक्ति भगवान के प्रति होगी। इसीलिए यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इस तरह भगवान की शक्ति उनकी सारी सृष्टि में वितरित है। एकमात्र यह दिव्य ज्ञान ही मनुष्य को भौतिक मोह के कलमश से बचा सकता है। क्योंकि भगवान की शक्ति सर्वत्र वितरित है, अतः शुद्ध आत्मा या भगवत भक्त हर वस्तु को भगवान से संबंधित देख सकता है। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान की शक्ति तो हर जगह पर है, लेकिन उसको केवल कौन देख सकता है? सिर्फ शुद्ध भक्ति दे सकता है। लेकिन जो भक्त नहीं होंगे, अभक्त होंगे, उनको हर एक वस्तु दिखेगी, हर एक वस्तु का आकर्षण दिखेगा, परंतु उनके अंदर भगवान की शक्ति नहीं दिखेगी। और जब वो भगवान की शक्ति नहीं दिखेंगे तो फिर वो उस वस्तु और व्यक्ति के चक्कर में फंस जाएंगे। लेकिन जो शुद्ध भक्त होता है, उसको तो सिर्फ वो वस्तु तभी आकर्षित कर रही है क्योंकि उसका प्रीतम, उसका भगवान उसके अंदर उसको दिखता है, तब वो तो भगवान के प्रति है। भले वो अगर किसी वस्तु के विषय में सोच रहा है तो भी उसका मन जो है वो भगवान में लगा हुआ है कि ये भगवान ने कितना सुंदर किया है, ये भगवान की रचना कितनी सुंदर है, ये भगवान का कार्य। तो हर क्षण शुद्ध भक्त जो है प्रत्येक वस्तु में भगवत दर्शन करता है। शुद्ध आत्मा या भगवत भक्त हर वस्तु को भगवान से संबंधित देखता है, अतः उसे बाहरी आवरणों से कोई स्नेह नहीं रहता। वह शुद्ध आध्यात्मिक विचार उसे भौतिक संगति के समस्त कलमश से निश्चेष्ट बना देते हैं। भौतिक संगति, संसार से कोई भी आकर्षण उसका समाप्त हो जाता है। शुद्ध भक्त किसी भी अवस्था में भगवान के संसर्ग को भुला नहीं पाता। अगर हम चाहते हैं कि हम सदैव भगवान को याद रखें, भगवान के संसर्ग में रहें और कभी भी मोह या फिर भौतिक आकर्षण या फिर भौतिक कलमश हमारे अंदर ना आए, तो उसके लिए हमें भगवान की शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी। और इस कलयुग में केवल हरिनाम ही एकमात्र आधार है जिसके द्वारा हम भगवान को के दर्शन प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति में कर सकते हैं। इसलिए हमें बहुत ही प्रेम और श्रद्धा से भगवान के पवित्र नाम का आश्रय लेना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं, यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रय गुणाशये स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वाराज्यमृच्छति यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रय यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रिय गुणाशये स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वाराज्यमृच्छति यदा रहितम आत्मानम। यदा मना जब, रहितम यानी उससे मुक्त, आत्मानम मतलब आत्मा, भूतेन्द्रिय गुणाशय, भूत यानी भौतिक तत्व, इंद्रिय यानी भौतिक इंद्रिय, गुणाशय अर्थात भौतिक गुणों के प्रभाव के अधीन। यहाँ श्रील भगवान ब्रह्मा जी को कहते हैं, जब तुम्हें प्रत्येक वस्तु में मैं दिखूंगा, यदा रहित, जब तुम भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाओगे ना, फिर आत्मानम यानी आत्मा में भूत यानी भौतिक वस्तुओं में, इंद्रिय यानी इंद्रियों में, गुण यानी भौतिक गुणों के प्रभाव के अधीन, स्वरूपेण मया, स्वरूपेण यानी शुद्ध जीवन में, मया मना मेरे द्वारा, उपेतम यानी निकट आकार, पश्यन यानी देख सकोगे। फिर जब तुमको मेरा आकर्षण हो जाएगा ना, फिर तुम्हारा अपना एक स्वरूप है, वो स्वरूपेण मयोपेतम पश्यन, तुम अपने उस स्वरूप को देखोगे। पश्यन मतलब देखोगे, स्वराज्यम यानी आध्यात्मिक साम्राज्य, रिश्चति अर्थात भोग करते हैं। हर एक जीव का एक वास्तविक स्वरूप आध्यात्मिक जगत में है और जीवन की सिद्धि यही है कि हम अपने उस वास्तविक स्वरूप को समझ जाए। इसी के लिए यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जब तुम्हें संसार का मोह समाप्त हो जाएगा, जब प्रत्येक वस्तु के अंदर तुमको भगवान की ही कृपा, भगवान की शक्ति दिखेगी, और जब तुम बहुत दृढ़ता के साथ भगवत भजन करोगे, फिर क्या होगा, स्वरूपेण मयोपेतम पश्यन् स्वराज्य मृच्छति। स्वराज्य मतलब आध्यात्मिक साम्राज्य में जो वास्तविक स्वरूप है उसका ज्ञान जीव को होने लगेगा, और जब वो हो जाएगा तब क्या होगा। श्रील प्रभुपाद अनुवाद देखिए, जब तुम स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के विचारों से मुक्त होगे तथा तुम्हारी इंद्रियां प्रकृति के सारे प्रभावों से मुक्त होंगी, तब तुम मेरी संगति में अपने शुद्ध रूप की अनुभूति कर सकोगे। उस समय तुम शुद्ध भावनामृत में स्थित होगे। कितना सुंदर है ये काली सुनने में कैसा आनंदित लगता है, और जब ये वास्तविक किसी को ये दशा प्राप्त होती होगी उसका तो कहना ही क्या। भगवान कहते हैं जब तुम स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के विचारों से मुक्त हो जाओगे। हम आजकल देखते हैं हम बस इन्हीं चक्करों में लगे रहते हैं, वो जो वास्तविक रस है कि मेरा एक स्वरूप है और उस स्वरूप में मैं भगवान के साथ रहती हूँ, उस स्वरूप में भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान करती हूँ, वो तो कभी याद भी नहीं आता, लेकिन जब सूक्ष्म और स्थूल विचारों से हम मुक्त हो जाएंगे तथा तुम्हारी इंद्रियां प्रकृति के सारे प्रभावों से मुक्त हो जाएंगे, इंद्रियों में ये जो प्राकृतिक गुण है उनके सारे प्रभाव समाप्त हो जाएंगे, तब तुम मेरी संगति में अपने शुद्ध रूप की अनुभूति कर सकोगे। फिर वो वास्तविक स्वरूप का अनुभव होगा और उस समय तुम शुद्ध भावनामृत में स्थित हो जाओगे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्ति रसा अमृत सिंधु में यह कहा गया है कि जिस व्यक्ति की एकमात्र आकांक्षा भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करने की होती है, वह संसार की किसी भी अवस्था में मुक्त पुरुष होता है। हम क्या सोच रहे हैं, हमारी क्या आकांक्षा है, उसी से जो है वो हमारी अवस्था चेंज होती है, उसी से हमारा जो संसार के अंदर जो बद्ध, हम अभी बद्ध जीव है ना, हमको मुक्त होने के लिए मरने की आवश्यकता नहीं है। बस बद्ध जीव तब तक है जब तक वो संसार के अंदर मोह रखता है या संसार के अंदर आकर्षण रखता है, लेकिन जब जीव की एकमात्र आकांक्षा भगवान की प्रेमा भक्ति करने की होती है कि बस मुझे भगवान की प्रेमा भक्ति करनी है, भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ना है, भगवान को संतुष्ट करने के लिए कार्य करना, फिर वो किसी भी अवस्था में रहता है, भले वो संसार में बद्ध दिखता है परंतु वही मुक्त पुरुष होता है। ये सेवा भाव ही जीव का स्वरूप या असली रूप है। ये भगवान की सेवा जो है वो करने की इच्छा हो जाए ना, समझो जीव अपने वास्तविक स्वरूप में आ गया। क्योंकि श्री प्रभुपाद जी ने भी श्री चैतन्य चरितामृत में यह घोषित किया है कि इस कथन की संपुष्टि की है कि जीव का असली आध्यात्मिक रूप भगवान की नित्य दासता का है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो मायावादी लोग जीव में सेवा भाव के विचार से कांपने लगते हैं। वे ये नहीं जानते कि दिव्य जगत में भगवान की सेवा दिव्य प्रेम पर आधारित है। दिव्य प्रेममयी सेवा की तुलना भौतिक जगत की बलात् कराई गई सेवा से कभी नहीं की जा सकती। भौतिक जगत में भले ही कोई इस विचार में रहे कि वह किसी का दास नहीं है, फिर भी वह भौतिक गुणों के आदेशानुसार अपनी इंद्रियों का दास होता है। वस्तुतः इस भौतिक जगत के में स्वामी कोई नहीं है, अतः इंद्रियों के दास को दासता का बहुत बुरा अनुभव रहता है। वे सेवा के विचार से ही कांप उठते हैं क्योंकि उन्हें दिव्य पद का कोई ज्ञान नहीं होता। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत बड़ी हकीकत बताते हैं कि संसार में जो भी आता है ना, वो देखता है कि सब लोग दुखी हैं और इस संसार में हर किसी को सेवा ही करनी पड़ती है। जीव जब से होश संभालता है तब से वो सेवा ही कर रहा होता है। पहले वो अपनी इंद्रियों की सेवा करता है, ये पसंद लगता है ये नहीं पसंद, और उसके बाद जैसे जैसे बड़ा होता है तो भी उसके जीवन को एक ही कार्य करना है, सेवा सेवा। तो वो सोचता है कि कब मेरी जान छुटेगी इस सेवा से, कब तो मैं भगवान के अंदर जाके लीन हो जाऊंगा और आनंद से जीऊंगा। तो उसको जो दिव्य सेवा भगवान के साथ प्रेम की, वो तो उसको पता ही नहीं है ना। तो वो क्या सोचता है कि मुझे इस सेवा के कार्य से जान छुड़ानी है, इसलिए वो सेवा के वो ये उसको जब बताया जाता है कि दिव्य जगत में आपको सेवा करनी है भगवान की, तो उस विचार से ही कांपने लगते, नहीं बाबा यहाँ पर भी संबंध, यहाँ पर भी सेवा, और उधर भगवान के धाम में भी सुख से बैठेंगे नहीं, वहाँ पर भी सेवा ही करनी पड़ेगी। लेकिन ये जो भौतिक जगत की सेवा जो बलात् कराई जाती है, किसी की इच्छा नहीं है संसार में सेवा करने की, लेकिन फिर भी मजबूरन करनी पड़ती, उस सेवा से वो दिव्य प्रेममयी सेवा की तुलना नहीं की जा सकती। उसके अंदर जो आनंद है, उसके अंदर जो रस है, उसके अंदर जो सुख है, वो किसी और वस्तु में नहीं, क्योंकि जीव का स्वभाव ही है सेवा,
और जब तक वो भगवान की सेवा नहीं करेगा तब तक उसे माया की सेवा करवा कर दुखी किया जाएगा। इसलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि अतः इंद्रियों के दासों को दासता का बहुत ही बुरा अनुभव रहता है, वे सेवा के विचार से ही काम उठते हैं क्योंकि उन्हें दिव्य पद का कोई ज्ञान नहीं होता। दिव्य प्रेममयी सेवा में दास भगवान की ही तरह स्वतंत्र होता है, वहां पर बाय फोर्स सेवा नहीं है, वो तो भगवान की तरह ही स्वतंत्र होता है। भगवान स्वराट अर्थात पूर्णतया स्वतंत्र है और आध्यात्मिक जगत में दास भी स्वतंत्र या स्वराट है क्योंकि वहां बलात् सेवा नहीं की जाती, यहाँ दिव्य प्रेममयी सेवा स्वतः सुफूर्त प्रेम के कारण होती है। ऐसी सेवा की प्रतिबिंबित झलक पुत्र के प्रति माता की सेवा, मित्र के प्रति मित्र की सेवा या पति के प्रति पत्नी की सेवा अनुभव की जाती है। मित्रों, माता पिता या पत्नियों द्वारा सेवा के ये प्रतिबिंब बलकृत नहीं अपितु एकमात्र प्रेम के कारण है, किंतु इस भौतिक जगत में प्रेममयी सेवा केवल प्रतिबिंब है। असली सेवा या स्वरूप सेवा भगवान के सानिध्य में दिव्य जगत में वर्तमान है। दिव्य प्रेम की सेवा, दिव्य प्रेम की वही सेवा यहाँ पर भक्ति में की जा सकती है। तो श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर भगवत धाम में हम जब सेवा करते हैं उसकी एक छोटी सी झलक दिखाते हैं कि जब कोई माता अपने पुत्र से बहुत स्नेह करती है, जब उसको भगवान के बारे में पता नहीं हो, ठीक है, वो सिर्फ यही सोचती है कि मैं माता हूँ, तो वो अपना जीना मरना सब अपनी संतान के लिए करती है। उसको खाना खिलाना है, उसको किस तरह से है ना अच्छी शिक्षा देनी है, किस तरह से उसकी परवरिश करनी है, उसको किस टाइम पर, माँ बच्चा खेल रहा होता है उसको नहीं पता कि मुझे भूख लगी है, माँ को पता होता है, अरे 3 घंटे हो गए कुछ नहीं खाया, आ जाओ पहले प्रसाद खिलाते हो। तो वो उसको बलात् नहीं करवाई जा रही है, वो उसका स्नेह उससे करवाता है। जब एक पत्नी होती है वो सुबह से वेट कर रही होती है कब मेरा पति आएगा, हम मिल के खाएंगे, इतनी देर हो गई, उसको कहीं पर चैन नहीं आ रहा होता है, बस उसको यही होता है कि मेरा पति आ जाए जल्दी, मैं उसकी कुछ सेवा कर सकूं, क्योंकि उसको यही उसको लगता है मेरे जीवन का लक्ष्य है, तो उसमें उसको आनंद आ रहा होता है। तो उसी इसकी ये थोड़ी सी झलक है, लेकिन वास्तव में हम आत्मा हैं और हमारा संबंध भगवान के साथ है, और वो भगवान भी कैसा है, पूरा अपने जैसा स्वतंत्र रखता है, वो बाय फोर्स बलात् सेवा नहीं करवाता, लेकिन जीव को जो आनंद मिलता है भगवत सेवा करने के से, उसका केवल प्रतिबिंब है, यहाँ पर तो केवल उसका रिफ्लेक्शन है, लेकिन वास्तविक आनंद तो केवल भगवान की सेवा से ही जीव को प्राप्त हो सकता है। इसे यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं दिव्य प्रेम की वही सेवा यहाँ पर भक्ति में की जा सकती है। जब जीव आहिस्ता आहिस्ता भक्ति में आगे बढ़ता है, श्रवण करता है, कीर्तन करता है, फिर उसको कितना आनंद आता है, ऐसा लगता है बस संसार कथा शुरू होती है और ऐसा लगता है बस यहीं पर समय समाप्त हो जाए। दूसरी अगर ड्यूटीज ना हो ना, तो फिर भक्त कथा और कीर्तन के अतिरिक्त और कुछ करने की इच्छा तक ना करे। हम अभी क्यों सोचते हैं कि भाई अब कथा खत्म होनी चाहिए या फिर अब घर जाना है, क्योंकि समय हमारा साथ नहीं देता, क्योंकि संबंधों के बहुत सारे प्रतिबिंब हैं, बहुत सारे हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इसलिए हम समय को ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन यदि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना होती ना, तो एक भक्त क्या करता, सुबह से लेकर रात तक केवल नाम जप करता, केवल श्रवण करता, तो उसमें उसको आनंद कितना आ रहा होगा तभी ना। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस संसार में भक्ति का आनंद जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है।
और ऐसा ही आनंद दिव्य जगत में भगवत सेवा से प्राप्त हो। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, यह श्लोक ज्ञानियों पर भी लागू होता है। जब प्रबुद्ध ज्ञानी समस्त कल्मशों से यथा स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के साथ साथ प्रकृति के गुणों वाली इंद्रियों से मुक्त होता है तो वह ब्रह्म को प्राप्त करता है। जब वो सारी कल्मशों से दूर हो जाता है तभी उसको ब्रह्म की प्राप्ति होती है और इस तरह भावबंधन से छूट जाता है। वस्तुतः ज्ञानी तथा भक्तगण भौतिक कल्मश से मुक्ति पाने तक एकमत है। उनको भी यही है कि मुझे भौतिक जगत से मुक्ति प्राप्त करनी है और भक्त भी यही सोचता है। यहाँ तक तो एक मत है, किंतु जहाँ ज्ञानी लोग सामान्य ज्ञान के स्तर पर शांत हो जाते हैं वहीं भक्तगण प्रेममयी सेवा में और अधिक आध्यात्मिक प्रगति कर लेते हैं। लेकिन आगे जाने के बाद वो तो शांत हो जाते हैं क्योंकि वो लीन हो जाते हैं, और भक्त क्या करते हैं, भगवान से प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। वो भगवान जिससे वो प्रेम करते हैं उसको प्राप्त करके उसके साथ संबंध जोड़कर उनकी सेवा करने में जो आनंद आएगा, भगवान के साथ भगवान को स्पर्श करना, भगवान को आलिंगन करना, भगवान को अपनी सेवा से प्रसन्न करना, उसको जो आनंद आ रहा होगा, क्या उतना आनंद ब्रह्म ज्योति में लीन होकर आ सकता है? तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि किंतु जहाँ ज्ञानी लोग सामान्य ज्ञान के स्तर पर शांत हो जाते हैं वहीं भक्तगण प्रेममयी सेवा में और अधिक आध्यात्मिक प्रगति कर लेते हैं। भक्तगण अपने स्वतः स्फूर्त सेवा भाव में आध्यात्मिक व्यष्टित्व विकसित कर लेते हैं जो उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ माधुर्य रस तक पहुंच जाता है। तो आखिर तो हमें भगवान के माधुर्य प्रेम को ही प्राप्त करना है, लेकिन वो जो हमारी भक्तिमय स्वतः सुफूर्त सेवा भाव है उसमें जैसे जैसे विकसित होता जाता है हमारा ये सेवा भाव, विकसित करते 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 जीव भगवान से प्रेम करना लगता है, और जब वो माधुर्य रस तक पहुंचता है फिर उससे बढ़कर और कुछ नहीं संसार में। किसी भी लोक में, किसी भी जगत में भगवत प्रेम से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। उसके बाद भगवान ब्रह्मा जी को आश्वासन देते हैं कि तुम किसी भी कार्य को करने की जो जिम्मेदारी तुमने मांगी है कि मुझे अलग अलग कार्य करने हैं, असंख्य रूप जनसंख्या के बढ़ाने हैं, तो तुम उसके प्रति कुछ भी शोक मत करो, चिंता मत करो, क्योंकि सभी कालों में तुम पर मेरी कृपा बनी रहेगी। भले जो भी तुम कार्य करोगे तो मेरी कृपा सदैव तुम्हारे पास रहेगी, तो तुमको उसके प्रति चिंता करने की आवश्यकता नहीं। भगवान कहते हैं, नाना कर्म विता नेना प्रजा बाहवेहि सिश्रीक्षत नात्मा वसी दत्यसि दत्यस्मित्मिस्ते वर्षीयान् मदनोग्रह नाना कर्म वितानेन प्रजा बाहवी सिश्रीक्षत नात्मा वसीदत्यस्मिस्ते वर्षीयान् मदनुग्रह नाना कर्म वितानेन प्रजा बहवी सुश्रीक्षत नात्मा वसीद्यस् नात्मा वसी दत्यस्मिस्ते वर्षीयान् मदनुग्रह नाना कर्म वितानेना। नाना कर्म मतलब तरह तरह की सेवा, वितानेना यानी विस्तार से, प्रजा बहवी सस्रिक्षया, प्रजा माना जनता, बहवी यानी असंख्य सस्रिक्षता वृद्धि करने की इच्छा करते हुए, आपने ये इच्छा की थी कि मुझे प्रजा की असंख्य स्वरूपों में वृद्धि करनी है, तो नात्मा वसीदत, ना माना कभी नहीं, आत्मा यानी आत्मा, अवसीदति यानी वंचित होगे, आप कभी भी वंचित नहीं होगे, अस मीन्स ते, अस्मिन मन पदार्थ में, ये ते यानी तुम्हारा, वर्षीयन मद अनुग्रहत, वर्षीयन सदैव बढ़ती हुई, मद अनुग्रहत अर्थात मेरी अनुग्रह यानी अहितु के कृपा से। भगवान कहते चूके तुमने जनसंख्या को असंख्य रूप में बढ़ाने तथा अपनी सेवा में सेवा के प्रकारों को विस्तार करने की इच्छा प्रकट की है, अतः तुम इस विषय से कभी भी वंचित नहीं होगे, क्योंकि कभी सभी कालों में तुम पर मेरी अहितु की कृपा बनी रहेगी। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान का शुद्ध भक्त विशेष काल वस्तु तथा परिस्थिति के तथ्यों से ज्ञात होने के कारण भगवत भक्तों की संख्या को नाना प्रकार से सदैव बढ़ाना चाहता है। अब ये जो सारा भगवान का आदेश है ना, वो हमारे पर है। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ब्रह्मा जी को आदेश दे रहे हैं, बल्कि हमको ये इच्छा ब्रह्मा जी की है कि वो संसार में असंख्य स्वरूपों में जनसंख्या वो बढ़ाना चाहते हैं। और एक भक्त सदैव चाहता है कि असंख्य संख्या में भगवान के शुद्ध भक्तों को बढ़ाया जाए। तो शीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान का शुद्ध भक्त विशेष काल वस्तु या परिस्थिति के तथ्यों से ज्ञात होने के कारण भगवत भक्तों की संख्या को नाना जीव भक्त जानता है कि जीव का कल्याण केवल भगवान की भक्ति में होगा, इसलिए वो सबके साथ सबको यही सिखाना चाहता है कि आप भगवान की भक्ति करो। तो दिव्य सेवा का ऐसा विस्तार भौतिकवादी को भले ही भौतिक लगे, जो साधारण लोग होंगे उनको तो लगेगा कि ये भौतिक कार्य करता है, किंतु तथ्य तो यह है कि वह भक्त के प्रति भगवान की अहितु की कृपा का ही विस्तार होता है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो भगवान की कृपा होती है, तभी तो जीव के हृदय में भगवत भक्ति उत्पन्न होती है। हमारे शब्दों में या हमारी करतूत ऐसे नहीं है कि हम किसी को भक्त बना सकें। कोई भक्त बनता है तो भगवान की कृपा, क्योंकि भगवान ऐसा चाहते हैं। तो ऐसे कार्यों की योजनाएं भौतिक कार्य प्रतीत हो सकती हैं, किंतु परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों की तुष्टि में लगे होने से उनकी शक्ति भिन्न भिन्न होती है। देखने में लगेगा कि हम ये योजना कर रहे हैं कि हम इस तरह से प्रचार करें, इस तरह से लोगों को भक्त बनाएं, लेकिन ये योजनाएं भले भौतिक लगती हैं, लेकिन परमेश्वर की जो दिव्य इंद्रियों को संतुष्टि होती है, भगवान को संतुष्ट करने के लिए यदि हम ये कार्य कर रहे हैं, तुष्टि में लगे होने से उनकी शक्ति भिन्न भिन्न हो जाती है। मतलब वो आध्यात्मिक शक्ति हो जाती है, जिसके कारण जीव जो है वो लोगों को, साधारण जीवों को जो भटक रहे हैं, उनको भगवान के साथ जोड़ सकते हैं। आगे भगवान कहते हैं, ऋषि माध्यम न भत्नाति पापी यास्त्वं रजो गुण यन्मनो मयि निर्बद्धं प्रजा संसृजतो पिते। ऋषि माध्यम न भत्नाति पापी यास्त्वं रजोगुणा यन्मनो मयि निर्बद्धं प्रजा संसृजतो पिते। ऋषि आद्यम, ऋषि माना ऋषि को, आद्यम माना सर्वप्रथम, आप तो सर्वप्रथम ऋषि हैं। ब्रह्मा जी को भगवान कहते, आप अपने आप को साधारण मत समझो। ऋषि आद्यम न बदनाति, न बदनाति मतलब कभी नहीं बदनाति यानी पास फटकता है। क्या पापी यास्त्वं रजोगुणा, पापी यानी बहुत अपराधमय, त्वाम यानी तुम, रजोगुण यानी रजोगुण, आप तो सर्वप्रथम ऋषि हो, तो आप ये मत समझो कि कभी रजोगुण आपके सामने फटक सकता है या आपको आक्रमण आपके ऊपर कर सकता है। यन मनो मई निर्बद्धम, यन मनो क्योंकि मन अर्थात मन, मई यानी मुझ में निर्बद्धम लगे रहे, क्योंकि आपका मन तो सदैव मुझ में लगा रहेगा, तो भला रजोगुण आपको कैसे परास्त कर सकता है। प्रजाम संसृजतोपि ते, प्रजा मनी संतति, ये जो संसार का जो उनको उत्पन्न करना है, संसृजत उत्पन्न करते हुए अपि भी ते तुम्हारे, तुम भले ही संसार को उत्पन्न करते हो लेकिन तुम क्योंकि आदि ऋषि हो तो तुमको, क्योंकि सदैव तुम्हारा मन मुझ में लगा रहेगा तो ये गुण जो है वो तुम पर कभी भी आक्रमण नहीं कर सकेंगे। अनुवाद, तुम आदि ऋषि हो और तुम्हारा मन सदैव मुझ में स्थित रहता है, इसलिए विभिन्न संततियां उत्पन्न करने के कार्य में लगे रहने पर भी तुम्हारे पास पापमय रजोगुण फटक भी नहीं सकता। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मा को यही आश्वासन द्वितीय सिकंद के 9वें अध्याय के श्लोक नंबर 36 में दिया गया था। भगवान द्वारा इस अनुग्रह दिखाए जाने से ब्रह्मा की सारी योजनाएं अच्युत हैं। भगवान ने कह दिया कि तुमको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है, तुम जब भक्ति योग में स्थित हो, मेरे लिए कार्य कर रहे हो, मुझे प्रसन्न करने के लिए, तो क्या क्या ताकत है माया की या रजोगुण की जो तुम्हें तुम्हारे ऊपर आक्रमण कर सके, वो तुम पर कभी भी आना अपना प्रभाव नहीं जमा सकेंगे। तो ये जो भगवान ने अनुग्रह दिखाया है, भगवान ने जो आश्वस्त किया है, वो कितनी बड़ी ब्रह्मा जी की ना सफलता है। तो कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ब्रह्मा जी तो फिर भी मोहग्रस्त हो जाते हैं भगवान की लीलाओं को देखकर। उसका उत्तर देते हुए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि कभी ब्रह्मा मोहग्रस्त होते भी हैं, जैसा कि दशम स्कंद में है, तो वे अंतरंग शक्ति के कार्य को देखकर मोहित होते हैं। ये तो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, ये जो भौतिक माया है वो उनको मोहित नहीं करती। भगवान की लीलाएं तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मोहयति यत् सुरया, अगर इन लीलाओं को देखकर ब्रह्मा जी मोहित नहीं होते तो हम कैसे ये कह पाते कि हम जैसे साधारण जीव भला भगवान की लीलाओं को क्या समझ सकते हैं, ब्रह्मा जी इंद्र भी भगवान की लीलाओं को देखकर मोहित। तो ये तो केवल भगवान की एक योजना है, भगवान स्वयं ऐसा चाहते हैं कि मेरे भक्त जो है वो इस तरह से मेरे साथ प्रेम लीला का आदान प्रदान करें। इसीलिए यहाँ श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वे तो अंतरंग शक्ति के कार्य को देखकर मोहित होते हैं और वह दिव्य सेवा में आगे बढ़ने के लिए है। जैसे जैसे ऐसी भगवान लीलाएं करेंगे तभी तो जीव जो है वो भगवान के निकट आएगा, दिव्य सेवा स्वयं भी भगवान की करेगा और जिनके साथ भगवान ने ये लीला की है अर्थात इंद्र जी, ब्रह्मा जी, ये लोग का भी प्रेम और सेवा भाव बढ़ेगा। अर्जुन भी इसी तरह से मोहित होता पाया जाता है। भगवान की शुद्ध भक्तों को ऐसा मोह भगवत ज्ञान में उनकी उत्तर उन्नति के लिए ही होता है। भगवान अगर अपने शुद्ध भक्तों को कोई मोहग्रस्त करते भी हैं तो उसका कारण क्या होता है कि वो भगवान उनको भक्ति में और भी उन्नति कराना चाहते हैं, और भी अपने प्रेम के, अपनी सेवा के और अपने प्रति आकर्षण को बढ़ाने के लिए ही भगवान उनको मोहग्रस्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा। हरे कृष्णा।